بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی شروتا متروں کی سیوا میں زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ شروتاؤں، آج آپ قرآن مجید کے سورہ نساء کی 58 اور 59 آیتوں کی تلاوت اور انواد سنیں گے۔ تلاوت کا شرح پراپت کیا ہے قاری شہاد محمد انور نے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا وَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے، نسندیہ ایشور تمہیں آدیش دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے مالکوں کو لوٹا دو، اور جب کبھی لوگوں کے بیچ فیصلہ کرو تو نیائے سے فیصلہ کرو۔ نسندیہ ایشور تمہیں اچھے اپدیش دیتا ہے، نشچت روپ سے وہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ ہے ایمان والو، ایشور کا آگیا پالن کرو تتھا پیغمبر اور سوئم تم میں سے ایشور دوارا نردھارت لوگوں کا آگیا پالن کرو۔ یدی کسی بات میں تم میں وواد ہو جائے تو اسے ایشور کی کتاب اور پیغمبر کی اور پلٹاؤ، یدی تم ایشور اور پلے پر ایمان رکھتے ہو۔ نسندیہ وادوں کو سماپت کرنے کے لیے یہ پدھتی بہتر ہے اور اس کا انت ادھک بھلا ہے۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ آج رویوار ہے، ستمبر کی 5، محرم کی 27 اور شہری ور ماہ کی 14 تاریخ۔ کارکرموں کی روپ ریکھا اس پرکار ہے، پہلے آپ سماچار سنیں گے، پھر انمول باتیں ہوں گی، اس کے بعد راجنیتک چرچا پیش کی جائے گی، جس کے اپرانت آپ سنیں گے کارکرم قرآن ایشوریہ چمتکار۔ سبھا کے انت میں ہم آپ کو ساپتاہک کارکرم سنوائیں گے آج کل۔ تو یہ تھی روپ ریکھا، آپ کچھ ہی چھڑوں میں وشو سماچار پیش کیے جائیں گے۔ یہ تہران ہے، اب آپ قائم رضوی اور مریم مہردادی سے وشو سماچار سنیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آج کے مکھیہ سماچاروں کا سارانش۔ عبداللہ رئیسی نے کہا ہے کہ پڑوسیوں کی سرکشا کو ہم اپنی سرکشا سمجھتے ہیں۔ افغانستان کے پنجشیر میں طالبان اور اس کے ویرودھیوں کے بیچ جھڑپوں میں کئی طالبان مارے گئے ہیں۔ آتنکوادی سنگٹھن داعش کو نئے ہتھیاروں سے لیس کر کے عراق میں پھر سے پریوگ کرنے کی تیاری تیز ہو گئی ہے۔ جہاد اسلامی نے اسرائیل کو چیتاونی دی ہے کہ اگر پریویسٹن سماپت نہیں کیا جاتا تو ہمارے پاس دوسرے وکلپ ہیں۔ اور اب آپ وستار سے سماچار سنیے۔
راشٹرپتی آیت اللہ رئیسی کا کہنا ہے کہ اپنے پڑوسیوں کی سرکشا کو ہم اپنی ہی سرکشا مانتے ہیں۔ راشٹرپتی رئیسی نے اپنے ایک ٹیلی ویژن سمبودھن میں یہ کہا ہے کہ اب تک انہوں نے وبھن دیشوں کے راشٹرادھیکشوں کے ساتھ 50 سے ادھک بیٹھکیں اور سمپرک کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان سبھی بیٹھکوں اور سمپرکوں میں دیش کے ساتھ وارتا پر شما کیجیے گا دیشوں کے ساتھ وارتا پر بل دیا گیا۔ ایران کے راشٹرپتی نے اپنے سمبودھن میں افغانستان کے حالیہ پریورتنوں کی اور سنکیت کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ افغانستان کی ورتمان سمسیا کا سمادھان لوگوں کی اچھا ان کے متوں سے وہاں پر ایک سرکار کے گٹھن کے مادھیم سے ہو۔ راشٹرپتی رئیسی کے انوسار ایران ہمیشہ ہی شانتی، استھرتا اور جنتا کی اچھا کے سمان کا سمرتھک رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں جنتا کے ہاتھوں چنی ہوئی سرکار ایران کے ساتھ اچھے سمبندھ رکھ سکتی ہے۔ ایران کے راشٹرپتی کا کہنا تھا کہ افغانستان کی جنتا ورشوں سے سنکٹوں کا سامنا کرتی آ رہی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ افغان سنکٹ نے یہ سدھ کر دیا ہے کہ امریکہ کی اپستھتی کہیں بھی شانتی استھاپت نہیں کرا سکی، بلکہ یہ سرکشا کو شتی پہنچاتی رہی ہے۔ آیت اللہ رئیسی نے پرمانو وارتا کے سندرب میں کہا کہ وارتا کوٹنیتی کا ایک مادھیم ہے اور ایران اس سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ اور پشچم ہمیشہ ہی دباؤ ڈال کر وارتا کرنا چاہتے ہیں۔ राष्ट्रपति रईसी के अनुसार ईरान पर दबाव का कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, जिसका अनुभव पश्चिम को भी है। उन्होंने कहा कि दबाव और धमकी के साथ वार्ता ईरान को कभी भी स्वीकार्य नहीं है।
पंजशर में भीषण झड़पें, तालिबान ने दावा किया है कि पंजशर प्रांत के शतल जिले पर उसने नियंत्रण कर लिया है। दूसरी ओर पंजशर मोर्चे के प्रवक्ता फहीम दश्ती ने इस बारे में कहा कि तालिबान ने पहाड़ी इलाके में कई धमाके करके दश्त रिवत इलाके का घेराव कर लिया है और उन्होंने भारी संख्या में हल्के और भारी हथियार जमा कर रखे हैं। उनका कहना था कि इलाके में भीषण झड़पें हो रही हैं, जबकि खावाक सीमा की सप्लाई लाइन कट गई है, जिसकी वजह से तालिबान के हजारों लड़ाके परियान जिले में घिर गए हैं। पंजशेर मोर्चे के प्रवक्ता फहीम दश्ती ने शतल जिले पर तालिबान के कब्जे के दावे के बारे में कुछ नहीं कहा। इसी मध्य अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति और प्रतिरोध मोर्चे के अहम कमांडर अमरुल्ला साले ने तुलू न्यूज को बताया कि वो पंजशेर में हैं और अभी भी तालिबान और स्थानीय लड़ाकों के बीच भीषण झड़पें हो रही हैं।
अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्ला साले ने पंजशीर में तालिबानी संकट पर संयुक्त राष्ट्र को पत्र लिखा है। साले ने संयुक्त राष्ट्र संघ और वैश्विक नेताओं से मदद की गुहार लगाई है। उन्होंने तालिबान से सुरक्षित अफगानिस्तान के अंतिम गढ़ पंजशीर को बचाने के लिए अपने संसाधनों को तुरंत जुटाने की अपील की। राष्ट्र संघ को लिखे एक पत्र में अमरुल्ला साले ने यह कहा है कि काबुल और अन्य बड़े शहरों में तालिबान के कब्जे के बाद पंजशीर पहुंची स्थानीय महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और 10,000 IDP सहित लगभग 2,50,000 लोग इन घाटियों के अंदर फंस गए हैं। यदि इस स्थिति पर ध्यान नहीं दिया गया तो पूरी तरह मानवीय तबाही आएगी, जिसमें भुखमरी, सामूहिक हत्या और नरसंहार भी देखने को मिल सकता है। उन्होंने कहा कि तालिबान ने पंजशीर तक मानवीय सहायता पहुंचने को रोक दिया है। यात्री से उनकी नस्लें पूछी जाती हैं। पंजशीर के सैन्य उम्र के पुरुषों को खदान से काम करवाया जाता है, उनको फोन बिजली बंद कर दिया जाता है और दवा की भी अनुमति नहीं दी जाती। लोग बहुत ही कम मात्रा में नकदी ले जा सकते हैं।
रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने कहा है कि अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति अमरीका और नेटो की पराजय और अक्षमता का चिन्ह है। अल मयादीन चैनल की रिपोर्ट के अनुसार रूस के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मारिया ज़ाखारोवा ने कहा कि अफगानिस्तान की स्थिति से ये बात स्पष्ट हो गई है कि वहां अमरीका और नाटो ने न केवल पराजय से दो चार हुए हैं, बल्कि वो इस देश के लिए कोई उपयोगी योजना तैयार करने में भी अक्षम रहे हैं। रूस के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि बड़ी ताकत बनने का अमेरिका का भ्रम टूट चुका है और उसे और नाटो को अफगानिस्तान से लज्जाजनक ढंग से फरार होने पर मजबूर होना पड़ा है। ज्ञात रहे कि अफगानिस्तान पर तालिबान के नियंत्रण और इस देश से अमेरिकी और नाटो सैनिकों की जल्दबाजी में वापसी इस देश में बहुत सी समस्याओं का कारण बनी है, जिसकी वजह से खुद पश्चिमी देशों में कड़ी आलोचना की जा रही है।
इराक के स्वयंसेवी बल हश्दुशाबी के कमांडर ने यह बताया है कि दाइश के आतंकवादी आधुनिक हथियारों से लैस हो रहे हैं। शफक न्यूज के अनुसार हश्दुशाबी ने इस बात पर चिंता जताई है कि दाइश के आतंकवादियों को आधुनिक हथियारों से लैस किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले एक वर्ष की तुलना में ये आतंकवादी अधिक खतरनाक हुए हैं और अब वे बहुत ही आधुनिक शस्त्रों के साथ हमले कर रहे हैं। इस इराकी कमांडर का कहना था कि हालिया कुछ दिनों के दौरान इराक के कुछ हिस्सों में दाइश की सक्रियता में तेजी हुई है। इराक में दाइश की गतिविधियों के बारे में एक इराकी सांसद कहते हैं कि दाइश का हालिया हमला इराक में इस आतंकवादी गुट की खतरनाक वापसी की ओर संकेत करता है। आतंकवादी गुट दाइश ने सलाह उद्दीन प्रांत के क्षेत्र यनकेजा पर हमला किया, जिसके परिणाम में 13 सुरक्षाकर्मी मारे गए। ज्ञात रहे कि आतंकवादी गुट दाइश एक बार फिर इराक में सिर उठाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इराकी सेना इस देश में आतंकवादी गुटों के विरुद्ध अपने ऑपरेशन को जारी रखे हुए है।
फिलिस्तीन के जिहाद इस्लामी संगठन ने धमकी दी है कि अगर गजा का घेराव खत्म नहीं हुआ तो हमारे पास और भी रास्ते हैं। फार्स न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार जिहाद इस्लामी आंदोलन के नेता दाऊद शहाब ने सीमावर्ती इलाकों को राजनीतिक परिवर्तनों से जोड़ने की हर तरह की कोशिश को खत्म करने पर बल दिया। उन्होंने अनातोली एजेंसी से बात करते हुए कहा कि मानव सीमाओं का मामला फिलिस्तीनी राष्ट्र को दंडित करने, हमलों पर फिलिस्तीनियों के जवाब और विरोध को रोकने के लिए इसराइल का हथकंडा है। उन्होंने गजा के घेराव को 15 साल पूरे होने की ओर इशारा किया और कहा कि अगर इसराइल गजा का परिवेष्टन खत्म न करने के अपने वचन पर अमल नहीं करता तो जनता के पास भी दूसरे विकल्प मौजूद हैं। उन्होंने इसराइल की ओर ज्वलनशील गुब्बारों को भेजे जाने का सिलसिला शुरू करने की ओर इशारा करते हुए कहा कि ज्वलनशील गुब्बारे जनता के दबाव के साधन हैं और इसके लिए फिलिस्तीनी गुटों की ओर से कार्यक्रम बनाए जाने की आवश्यकता नहीं है। ये फिलिस्तीनी जनता का अधिकार है और उनके पास जो भी संसाधन या हथकंडा है उसे इसराइल पर दबाव डालें।
फिलिस्तीनी मुद्दे का समर्थन करने के कारण फिलिस्तीनी गुटों ने सैयद हसन नसरुल्लाह की तारीफ की है। फिलिस्तीन के प्रतिरोधकर्ता गुटों की अल मुजाहिदीन ब्रिगेड का कहना है कि फिलिस्तीनी मुद्दों के समर्थन में हिजबुल्लाह के महासचिव के दृष्टिकोण की वे सराहना करते हैं। अल मुजाहिदीन ब्रिगेड का कहना है कि वो हिजबुल्लाह के महासचिव के बहुत बड़े समर्थक हैं। फिलिस्तीनी गुटों के हवाले से यू न्यूज़ एजेंसी ने रिपोर्ट दी है कि सैयद हसन नसरुल्ला हमेशा से ही फिलिस्तीन प्रतिरोध और फिलिस्तीनी राष्ट्र के साथ खड़े रहे हैं। इस फिलिस्तीनी गुट ने बल दिया है कि हम इस नज़रिए के लिए सैयद हसन नसरुल्ला का आभार व्यक्त करते हैं।
सऊदी अरब के तटवर्ती शहर दम्मा में दो धमाकों की खबरें प्राप्त हुई हैं। मीडिया सूत्रों का कहना है कि सऊदी अरब के तटवर्ती शहर दम्माद में दो धमाके हुए हैं। फार्स न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार मीडिया सूत्रों का कहना है कि प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा है कि आधी रात को जहरान शहर में अरामको ऑयल रिफाइनरी के निकट होने वाले बैलिस्टिक मिसाइल या ड्रोन हमलों की वजह से अरामको ऑयल रिफाइनरी को बंद कर दिया गया है। अभी तक सऊदी अधिकारियों ने इस बारे में किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है।
यमन के स्वयंसेवी बलों ने पिछले दिनों मारी प्रांत के बाकी बचे क्षेत्रों की स्वतंत्रता के लिए व्यापक ऑपरेशन शुरू किया। इस प्रांत पर कब्जे की खबर किसी भी वक्त अब आ सकती है। फार्स न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार पिछले दिनों मारी प्रांत के बाकी बचे क्षेत्रों की स्वतंत्रता का अभियान फिर से तेज हो गया है। यमनी सेना और स्वयंसेवी बलों की बड़ी संख्या मारिब के बाकी बचे इलाकों की आज़ादी के लिए भेजी जा चुकी है।
इस्लामी जागरूकता की महासभा के महासचिव ने सैयद अली गिलानी के देहांत पर संवेदना व्यक्त की है। अली अकबर विलायती ने कश्मीरी नेता सैयद अली गिलानी को जम्मू व कश्मीर की महान हस्ती बताया। अपने शोक संदेश में उन्होंने लिखा है कि दिवंगत गिलानी जम्मू व कश्मीर की ऐसी महान हस्ती थे जिन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय संघर्ष में गुजारा। इस शोक संदेश में अली अकबर विलायती ने सैयद अली गिलानी के परिजनों और उनके मानने वालों के प्रति सहृदयता जताई। याद रहे कि कश्मीर की हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेता सैयद अली गिलानी का देहांत बुधवार की रात 92 वर्ष की आयु में हुआ। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। पिछले 11 वर्षों से सैयद अली गिलानी हाउस अरेस्ट थे।
भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के मुजफ्फरनगर में रविवार को किसान महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में किसान पहुंचे। भारतीय संचार माध्यमों के अनुसार किसान महापंचायत के मंच से किसान संगठनों के नेताओं ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में हमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से बीजेपी को उखाड़ फेंकना है। इसी बीच महापंचायत के दौरान किसान मोर्चे ने ये ऐलान किया है कि किसानों का भारत बंद अब 25 सितंबर के बजाय 27 सितंबर को होगा। کسان مورچہ نے یہ بھی کہا ہے کہ 27 ستمبر کو ان کے بھارت بند کے دوران دیش میں سب کچھ بند رہے گا۔ کسان نیتا ٹکیت نے کہا کہ ہم نے شپت لی ہے کہ مرتے دم تک ہم دھرنا استھل سے ہٹیں گے نہیں، بھلے ہی وہاں پر ہماری قبر کیوں نہ بنا دی جائے۔ ٹکیت کے انوسار اگر ضرورت پڑی تو ہم اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ جب تک ہم جیت نہیں جاتے اس سمے تک ہمیں کوئی بھی طاقت وہاں سے ہٹا نہیں سکتی۔ اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے وشو سماچار سماپت ہوئے۔
یہ تہران ہے اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔
انمول باتیں۔
دوستو، یہ پروگرام محمد علی قمی لے کر حاضر ہے۔ آج ہم نیائے کے بارے میں چرچا کریں گے۔ دوستو، انسان ایک سماجک پرانی ہے اور سماج کو صحیح طرح سے چلانے کے لیے بہت سی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ سماج اور انسان کے صحیح سنچالن کے نیائے بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی انسان گاڑی بناتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ گاڑی صحیح طرح سے چلے تو وہ گاڑی کے پہیوں کو اس طرح بناتا ہے کہ ان کے مدھے سنتولن و بیلنس استھاپت رہے۔ اگر کسی گاڑی کے پہیوں کے بیچ سنتولن نہیں ہوگا تو گاڑی صحیح طرح سے نہیں چلے گی۔ یہی نہیں، اگر چار پہیے کی گاڑی ہے اور اگر کسی پہیے میں ضرورت سے زیادہ ہوا کم ہے تو گاڑی صحیح طرح سے نہیں چلے گی، یعنی جس طرح اسے چلنا چاہیے نہیں چلے گی۔ ٹھیک اسی طرح انسانی سماج ہے۔ جس پریوار، سماج یا دیش میں نیائے نہیں ہوگا، انصاف نہیں ہوگا، وہ صحیح سے اپنا راستہ طے نہیں کرے گا۔ مہان و سرو سمرتھ ایشور نے مانو سماج کو دانو سماج بننے سے روکنے کے لیے انسانوں کو انصاف سے کام لینے کا آدیش دیا ہے، اور پوتر قرآن میں بارمبار کہا گیا ہے کہ وہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ انصاف ایک ایسی چیز ہے جسے ہر سماج میں پسند کیا جاتا ہے۔ روچک بندو یہ ہے کہ انصاف کو وہ سماج بھی پسند کرتا ہے جو ایشور کو نہیں مانتا۔ انصاف سماج کے ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے۔ جس پریوار یا سماج میں انصاف کا دھیان نہیں رکھا جاتا، اس سماج یا پریوار میں آئے دن کسی نہ کسی بات کو لے کر وواد ہوتا رہتا ہے۔ انیائے یا ناانصافی وہ چیز ہے جسے گنے چنے لوگوں کے علاوہ کوئی پسند نہیں کرتا۔ جو لوگ انیائے کرتے ہیں وہ بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ کرتیہ غلط ہے، لیکن وہ سانسارک مایا موہ میں اس طرح پھنس چکے ہوتے ہیں کہ انہیں اپنے ہتوں کے علاوہ کچھ نہیں دکھائی دیتا۔ اس طرح کے لوگ، یعنی انیائی اور بھید بھاؤ سے پریرت لوگ، سماج میں اشانتی، نفرت اور ایک دوسرے سے دوری کا بیج بوتے ہیں۔ انصاف یا نیائے کی پریبھاشا میں حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کا جو حق ہے اسے دے دینا ہی نیائے کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کا جو حق بنتا ہے اسے اسی ماترا میں کھانا دیا جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک بڑا آدمی ہے جو اس کا حق بنتا ہے اسے اسی ماترا میں کھانا دیا جاتا ہے، یہ نیائے ہے۔ لیکن اگر اس کا الٹا کر دیا جائے، یعنی بڑے کو کم اور چھوٹے کو زیادہ ماترا میں کھانا دیا جائے، یا دونوں کو برابر برابر ماترا میں کھانا دیا جائے، تو اس استھتی میں ایک ساتھ انیائے ہوگا۔ پرنتو اگر دونوں بڑے ہوں یا دونوں بچے ہوں تو دونوں کو سمان ماترا میں بھوجن دینا نیائے ہوگا۔ دوسرے شبدوں میں حضرت علی علیہ السلام نے نیائے کی جو پریبھاشا کی ہے اس میں انصاف کے دونوں پرکار شامل ہیں، یعنی جب سمانتا کا دھیان رکھا جاتا ہے تو وہ حالت بھی نیائے میں شامل ہے، اور اسی طرح وہ حالت بھی نیائے میں شامل ہوتی ہے جب سمانتا کا دھیان نہیں رکھا جاتا۔ جیسے جب ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے اور دوسرا بڑا انسان، تو دونوں کو ان کے حساب سے کھانا دیا جاتا ہے۔ اس چیز کو کوئی بھی بھید بھاؤ یا انیائے نہیں کہتا۔ جو انسان شانتی چاہتا ہے، سماج اور دیش کی پرگتی چاہتا ہے، اپنی اور دوسروں کی بھلائی چاہتا ہے اور مہان ایشور کی پرسنتا چاہتا ہے تو اسے لوگوں کے بیچ انصاف قائم کرنا چاہیے۔ جس پریوار، سماج یا دیش میں لوگوں کے ساتھ بھید بھاؤ ہوتا ہے وہاں شانتی قائم نہیں ہو سکتی۔ مہامکتی داتا حضرت امام مہدی علیہ السلام جب لوگوں کے سامنے پرکٹ ہوں گے اور پوری دنیا میں شانتی قائم ہو جائے گی تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوگی کہ جس کا جو حق ہے اسے دے دیا جائے گا، کسی پر بھی کسی طرح کا اتیاچار نہیں ہوگا۔ پیغمبر اسلام کے پرپوتر امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کے بیچ انصاف قائم کر دیا جائے تو وہ سب آوشکتا مکت ہو جائیں گے اور آسمان سے روزی نازل ہوگی اور زمین اپنی برکتوں کو اگل دے گی۔ دوستو، آج کے پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیں۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔
راجنیتک چرچا۔
श्रोताओं, आपका स्वागत है कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा में। राजनीतिक चर्चा में आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी के پہلے ٹی وی انٹرویو کی۔
سیاست خارجی ما اقتضا میکنه که ما دنبال باشیم که حاکمیت اراده مردم مسلمان افغانستان باشه۔
راجنیتک چرچا میں ہم افغانستان کے حالات پر بھی ایک نظر ڈالیں گے جہاں ایک ساتھ کئی پرکار کی گھٹنائیں ہو رہی ہیں۔
ایک دولت مردمی باشه، ایک دولت
بھارت نندرت کشمیر میں الگاؤ وادی نیتا سید علی شاہ گیلانی کے ندھن کے بعد تناؤ کی استھتی اب بھی بنی ہوئی ہے، جبکہ دوسری اور प्रशासन का कहना है कि वो स्कूल और कॉलेज खोलने की तैयारी में है
और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस महीने में 18 साल के ऊपर के बच्चों को वैक्सीनेट कर दें तो इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, यूनिवर्सिटी खोल लेते हैं।
ये विषय भी कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा में शामिल रहेगा। तो चर्चा के विषय यही है, आरम्भ करते हैं ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी के इंटरव्यू से। اسلامی گنتنتر ایران کے راشٹرپتی سید ابراہیم رئیسی نے راشٹرپتی چنے جانے کے بعد اپنے پہلے ٹی وی انٹرویو میں کئی مہتوپورن مدوں پر اپنا نظریہ بیان کیا اور سرکار کی پراتھمکتاؤں کے بارے میں بتایا۔ جائزہ پیش کر رہے ہیں سید میسم۔
ایران کے راشٹرپتی سید ابراہیم رئیسی نے اپنے پہلے ٹی وی انٹرویو میں ارتھ ویوستھا اور کورونا ٹیکہ کرن میں تیزی جیسے وشیوں پر بات کی۔
ایک از اولویت ہوئی کہ دغدغم بود و پیگیری میکردم مسئلہ تامین واکسن مورد نیز۔
ایرانی راشپتی نے پڑوسی دیشوں کی سرکشا کو ایران کی سرکشا بتاتے ہوئے کہا،
سیاست خارجی ما اقتضا میکنه کہ ما دنبال باشیم کہ حاکمیت اراده مردم مسلمان افغانستان باشه، امنیت افغانستان هم امنیت ماست۔
افغانستان سنکٹ کا سمادھان جنتا کے ووٹ سے سرکار کا گٹھن اور دیش میں جن پرشاسن ہے۔ پرمانو سمجھوتے کے بارے میں راشٹرپتی رئیسی کا کہنا تھا کہ ایران پر دباؤ کا ابھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہے اور پشچم یہ بات کئی بار آزما چکا ہے، اس لیے دباؤ اور دھمکی کے ساتھ بات چیت سویکار نہیں ہے۔
اشارہ بردن ہمراہ با گفتگو قبلا جواب نداده، بارها تجربه کردن امریکایی ها، اروپایی ها کہ ان گفتگو ها جواب نمیده کہ بخواد ہمراہ با فشار باشه۔
ایرانی راشپتی کا کہنا تھا کہ وارتا ایک کوٹنیتک راستہ ہے لیکن امریکہ اور پشچم دباؤ کے ساتھ وارتا کرنا چاہتے ہیں، جبکہ ایران وارتا کے ذریعے اپنے راشٹریہ ہیتوں کو سرکشت کرنا چاہتا ہے اور پرتیبندھوں کو پورن روپ سے سماپت کرنا چاہتا ہے اور وہ اپنے اس ادیشے سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ پرمانو سمجھوتا ایک انتراشٹریہ سمجھوتا ہے جس کا سنیکت راشٹر سرکشا پریشد نے ایک پرستاؤ پارت کر کے انمودن کیا ہے۔ اسی لیے ایرانی راشٹرپتی نے پرمانو سمجھوتے کے بارے میں اپنی سرکار کا رخ پورن روپ سے اسپشٹ کر دیا جو انتراشٹری سدھانتوں کے انوروپ ہے۔ امریکی تھنک ٹینک اٹلانٹک کاؤنسل نے راشٹرپتی چناؤ میں جو بائیڈن کی جیت کے بعد ایک رپورٹ پرکاشت کی تھی جس میں آشا جتائی تھی کہ 20 جنوری 2021 کے بعد ایران کو لے کر وائٹ ہاؤس کی نیتی واستوک کوٹ نیتی کے آدھار پر ہونی چاہیے، نہ کہ ایران کو پوری طرح سے جھکانے کی اچھا پر۔ لیکن امریکہ آج بھی 22-31 پرستاؤ کا الگن کر رہا ہے اور پرمانو سمجھوتے کو لے کر جو نیتی ٹرمپ نے اپنا رکھی تھی اسے ہی آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ اس سندر میں یورپی دیشوں کی نیتی بھی کچھ صحیح نہیں رہی، حالانکہ ان دیشوں نے پرمانو سمجھوتے سے باہر نکلنے کے لیے امریکہ کی آلوچنا کی تھی اور اپنی پرتیبدھتاؤں پر عمل کرنے کی بات کہی تھی، لیکن ابھی تک انہوں نے اپنا ایک بھی وعدہ پورا نہیں کیا، بلکہ اب امریکہ کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، جبکہ وہ جانتے ہیں کہ ایران ورودھی امریکہ کے ایک پکشی پرتیبندھ غیر قانونی ہیں۔
افغانستان میں سرکار گٹھن کی پرکریا جہاں جاری ہے، وہیں افغانستان کی عام جنتا اپنی کچھ مانگوں کے بارے میں لوگوں اور وشیش روپ سے سرکار کو بتانا چاہتی ہے۔ اس بیچ پنشیر گھاٹی میں تناؤ اور لڑائی کی استھتی بنی ہوئی ہے۔ کابل سے آئی آر آئی بی کے لیے بہنام یزدانی کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں اختر عباس۔
افغانستان کے پورو راشٹرپتی اشرف غنی کو فرار ہوئے اور کابل پر طالبان کے قبضے کو لگ بھگ 3 سپتاہ کا سمے ہو رہا ہے۔ سرکاری کرمی بیکار اور کچھ ہی سرکاری سنستھائیں کچھ کرمیوں کے ساتھ ہی کام کر رہی ہیں یا لگ بھگ بند ہیں۔ جگہ جگہ طالبان کے پکش میں وال چوکنگ اور نعرے لکھے نظر آ رہے ہیں۔ طالبان نے ابھی تک سرکار کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا اور جنتا بھی بہت ہی کم اس بارے میں جانتی ہے۔
ایک
افغان ناگرک کا کہنا ہے کہ اگلی سرکار جنتا کے سمرتھن سے سمگر سرکار ہونی چاہیے اور جنتا کی آوشکتاؤں کو پوری کرنے والی ہونی چاہیے۔ ایک انیہ افغان شہری کا کہنا ہے کہ ہم جنتا کے حق والی سرکار چاہتے ہیں جو نردھنتا کو دور کرے اور روزگار کے سادھن اپلبدھ کرائے۔ کہا جا رہا ہے کہ طالبان دوارا سرکار گٹھن میں سب سے بڑی رکاوٹ پنجشیر ویلی ہے اور طالبان کو پنجشیر میں احمد مسعود کے پرتیرودھ کرتاؤں کی اور سے زبردست ٹکر مل رہی ہے۔ طالبان نے یہ ویڈیو جاری کر کے کہا ہے کہ پنجشیر کے کئی ضلعوں پر قبضہ کیا جا چکا ہے۔ احمد مسعود کے پرتیرودھ کرتاؤں نے بھی سینکڑوں کی سنکھیا میں طالبان کو بندھک بنانے اور جنگ میں ان کو مار گرانے کی بات کہی ہے۔ ان سب پریورتنوں کے بیچ کابل میں طالبان کے 2 ودیشی مہمان تھے۔ قطر کے ودیش منترالے کے وشیش دوت کے علاوہ آئی ایس آئی کے پرمکھ نے بھی کابل کا دورہ کیا۔ طالبان کوشش کر رہا ہے کہ کابل کے حامد کرزئی ایئرپورٹ سے دوبارہ انتراشٹری اڑانوں کا سلسلہ شروع ہو جائے۔ امریکہ نے جب اس ایئرپورٹ کو خالی کیا تو زیادہ تر سامان کو خراب کر دیا تھا، جس کی وجہ سے اس انتراشٹری ایئرپورٹ سے اڑانوں کے آنے جانے کا سلسلہ رکا ہوا ہے۔ بہنام یزدانی، آئی آر آئی بی نیوز، کابل۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ اور آپ سن رہے ہیں کاریکرم راجنیتک چرچا۔ سماچاروں سے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے گھٹناؤں کی تہ تک پہنچنے اور وبھن آیاموں کو چھونے کی کوشش، کاریکرم راجنیتک چرچا۔
بھارت نینترت کشمیر میں الگاؤ وادی نیتائے سید علی شاہ گیلانی کے ندھن کے بعد تناؤ کی استھتی بنی ہوئی ہے۔ دیونگت نیتا کے پریوار کے خلاف پولیس نے ایف آئی آر درج کر لی ہے، جبکہ دوسری اور پرشاسن نے اسکول کالج کھولنے کی تیاری بھی شروع کر دینے کا اعلان کیا ہے۔ ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता सिप्ते मोहम्मद हसन।
भारत प्रशासित कश्मीर में आज चौथे दिवस भी रिस्ट्रिक्शंस बरकरार रही और सईद अली शाह गिलानी के निवास को फौजी छावनी में तब्दील कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि आज सईद अली शाह गिलानी की फतेह खानी थी, परंतु किसी को भी उनके निवास पर जाने की अनुमति नहीं दी गई। श्रीनगर में हैदरपोरा क्षेत्र जहां सईद गिलानी की कब्र मौजूद है, जहां आरोप है कि उन्हें जबरदस्ती दफनाया गया, को भी सुरक्षा बलों ने अपने नियंत्रण में लिया है। सईद अली शाह गिलानी के पुत्र ने आरोप लगाया है कि उन्हें भी सईद गिलानी के फातह खाने की सभाएं आयोजित करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। इस बीच जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सईद गिलानी के तमाम सगे संबंधियों पर FIR दर्ज की है। उन पर आरोप है कि उन्होंने उनके पिता सईद अली शाह गिलानी के श्रव पर पाकिस्तानी परचम लहराया और भारत विरोधी नारे दिए। FIR में अगर किसी का नाम नहीं है, परंतु जितने भी सगे संबंधी हैं उनके विरोध में बडगाम के थाने में FIR दर्ज कर दी गई है। इस बीच जम्मू कश्मीर पुलिस के अध्यक्ष दिलबाग सिंह का कहना है कि पूरी जम्मू कश्मीर में स्थिति अब मुकम्मल तौर पर नियंत्रण में है और आज शाम के मोबाइल इंटरनेट को भी बहाल किया जा सकता है। इधर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों ने कहा है कि स्थिति में काफ़ी सुधार आया है। उन्होंने कहा कि अब युवकों के लिए कुछ करने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ खोलने के लिए उन्होंने एक मैकेनिज्म तैयार किया है। इस हवाले से 18 वर्ष से लेकर 24 वर्षीय युवकों को वैक्सीनेट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ खुल जाएंगे, उसके बाद छोटे छात्रों को भी स्कूलों में जाने की अनुमति होगी।
सही है, पेरेंट्स की डिमांड से मैं अवगत हूँ और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस महीने में 18 साल के ऊपर के बच्चों को वैक्सीनेट कर दें। तो इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, यूनिवर्सिटी खोल लेते हैं, फिर छोटे बच्चों के स्कूल पर भी। मुझे लगता है कि सिक्योरिटी की स्थिति काफी बेहतर है, यहाँ थोड़ी चुनौती रहती है, इसे और बेहतर बनाएंगे।
इस बीच जम्मू कश्मीर के भूतपूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनके पिता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज 3 दिवस के बाद गिलानी के देहांत पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्हें सगे संबंधियों के साथ एकता दिखाई है। सिप्त मोहम्मद हसन, रेडियो तेहरान, श्रीनगर।
और इसी के साथ राजनीतिक चर्चा का कार्यक्रम समाप्त होता है। यह रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम कुरान ईश्वरीय चमत्कार, जिसके बाद आप सुनेंगे सभा का अंतिम कार्यक्रम आज कल।
कुरान ईश्वरीय चमत्कार।
प्रिय श्रोताओं, कार्यक्रम कुरान ईश्वरीय चमत्कार की एक अन्य कड़ी लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आशा है पसंद करेंगे। आइए पहले सूरह कहफ की आयत नंबर 50 की तिलावत सुने।
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بدلا
اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کو چھوڑ کر ان سب نے سجدہ کیا وہ جنوں میں سے تھا اور اس نے اپنے پالنہار کے آدیش کی اوگیا کی تھی تو کیا تم لوگ میرے استھان پر اسے اور اس کی سنتان کو اپنا سنرکشک بناتے ہو جبکہ وہ تمہارے شترو ہیں अत्याचारियों के लिए क्या ही बुरा बदला है।
कुरान मजीद की कई आयतों में फरिश्तों द्वारा हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किए जाने और शैतान द्वारा इस ईश्वरीय आदेश की अवज्ञा किए जाने का वर्णन किया गया है। इनमें से हर आयत में किसी एक विषय पर अधिक बल दिया गया है। यह आयत कहती है कि ये मत सोचो कि ये घटना सृष्टि के आरंभ में घटी और फिर समाप्त हो गई तथा अब शैतान को तुमसे कुछ लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है, बल्कि सैद्धांतिक रूप से शैतान फरिश्ता नहीं था बल्कि वो जिन था तथा अन्य जिन्नों की भांति उसकी भी संतानें हैं और उसकी संतान पीढ़ी दर पीढ़ी तुम्हारी शत्रु है और तुम मनुष्यों को आघात पहुंचाने के प्रयास में है।
ये आयत सचेत करती है कि तुम ध्यान क्यों नहीं देते और ईश्वर के आदेश का पालन करने के स्थान पर शैतान का अनुसरण क्यों करते हो। ये अपने आप पर अत्याचार है और ईश्वर के स्थान पर शैतान को रखना अत्यंत बुरा व अप्रिय कर्म है तथा ये अत्याचारी यही कार्य करते हैं।
इस आयत से हमने सीखा कि वो मनुष्य जो फरिश्तों से भी श्रेष्ठ है और ईश्वर के आदेश पर फरिश्ते उसके समक्ष नतमस्तक हुए हैं, क्यों शैतान का अनुसरण करे जो उसके समक्ष झुकने के लिए तैयार नहीं हुआ था।
शैतान हजरत आदम को सजदा न करने के कारण ईश्वर के दरबार से निकाला गया, तो ईश्वर उन लोगों के साथ कैसा व्यवहार करेगा जो नमाज नहीं पढ़ते और स्वयं ईश्वर के समक्ष सजदा नहीं करते।
आइए अब सूरह कहफ की आयत नंबर 51 की तिलावत सुने।
أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا।
मैंने न तो आकाशों और धरती की सृष्टि के समय और न ही स्वयं उनकी रचना के अवसर पर उन्हें बुलाया और मैं पद भ्रष्टों को अपना सहायक नहीं बनाता।
पिछली आयत में शैतान के संरक्षण को नकारने के बाद इस आयत में कुरान मजीद कहता है कि सृष्टि के अस्तित्व में लाने में शैतान और उसके साथियों की कोई भूमिका नहीं थी और उन्हें सृष्टि के रहस्यों के बारे में कोई ज्ञान नहीं है कि वे अपनी शक्ति के आधार पर सृष्टि के संचालन में हस्तक्षेप कर सकें।
शैतान और उसके साथी मनुष्यों की ही भांति कमजोर और अधिक ज्ञान न रखने वाले जीव हैं जो कभी भी तुम्हारी सहायता और तुम्हारी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते, बल्कि मूल रूप से इस संसार में हर बुराई की जड़ शैतान और उसके साथी ही हैं, जिनका सृष्टि की व्यवस्था में कोई स्थान नहीं है। इसके विपरीत फरिश्तों को ईश्वर ने संसार के अनेक मामलों के संचालन का काम दे रखा है।
इस आयत से हमने सीखा कि मानव का संरक्षण उसके सृष्टिकर्ता का अधिकार है और उसके अतिरिक्त कोई अन्य मनुष्य का संरक्षक नहीं है।
जो लोग ईश्वर के मार्ग पर चलते हैं वे ईश्वर ही की भांति अत्याचारियों से सहायता नहीं लेते और अपनी स्वाधीनता की रक्षा करते हैं।
आइए अब सूरह कहफ की आयत नंबर 52 और 53 की तिलावत सुने।
وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ
और याद करो उस समय को जिस दिन ईश्वर अनेकेश्वरवादियों से कहेगा कि बुलाओ मेरे उन समकक्षों को जिनके बारे में तुम सोचते थे कि वे मेरे समकक्ष हैं, तो वे जितना भी उन्हें पुकारेंगे वे उत्तर नहीं देंगे और हम उनके बीच एक विनाशकारी ठिकाना बना देंगे। और अपराधी नरक की आग को देखेंगे तो उन्हें विश्वास हो जाएगा कि वे उसमें जाएंगे और वे उससे वापसी और बच निकलने का कोई मार्ग नहीं पाएंगे।
ये आयतें कहती हैं कि शैतान का अनुसरण और स्वयं पर उसके वर्चस्व को स्वीकार करने से मनुष्य अनेक ईश्वरवाद में ग्रस्त होता है और अनन्य ईश्वर से दूर हो जाता है। ऐसे लोग ईश्वर के स्थान पर धनवान और शक्ति संपन्न लोगों का अनुसरण करते हैं, जबकि प्रलय में इस प्रकार के लोग दूसरों की मुक्ति की तो बात ही अलग है, स्वयं की मुक्ति में भी सक्षम नहीं होंगे।
सैद्धांतिक रूप से ईश्वर के अतिरिक्त कोई भी प्रलय में किसी के काम नहीं आ सकेगा और जो भी इस संसार में ईश्वर को छोड़कर किसी भी व्यक्ति अथवा वस्तु से सहायता चाहेगा वो प्रलय में भटक रहा होगा, क्योंकि वो उन्हें जितना भी पुकारेगा उनकी ओर से उसे कोई उत्तर नहीं मिलेगा। इस प्रकार के लोगों के लिए तबाही और बर्बादी तथा नरक की आग के अतिरिक्त कोई ठिकाना नहीं होगा।
इन आयतों से हमने सीखा कि यदि हम ईश्वर को पुकारेंगे तभी हमें उत्तर मिलेगा, चाहे वो लोक हो या परलोक। किंतु यदि हम दूसरों को पुकारेंगे तो संभव है कि संसार में हमें उनकी ओर से उत्तर मिल जाए, किंतु वे प्रलय में हमारी पुकार का उत्तर देने में सक्षम नहीं हैं।
अनेकेश्वरवाद का मुख्य कारण निराधार आस्थाएं हैं। बुद्धिमान, विवेकपूर्ण और सही समझ रखने वाला व्यक्ति कभी भी अनेकेश्वरवाद में ग्रस्त नहीं होता। ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। रेडियो तेहरान सच्चाई और उन सब की आवाज जिनकी आवाज कोई नहीं सुनाता। ताजा समाचारों और सटीक समीक्षाओं के लिए हमसे जुड़िए और हमेशा जुड़े रहिए। और अब रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा का अगला कार्यक्रम। आज कल
दोस्तों, कार्यक्रम आजकल लेकर उपस्थित हैं, जिसमें अफगानिस्तान में मादक पदार्थों के उत्पादन और उसकी तस्करी के बारे में चर्चा करेंगे। स्वाति और कायम रिजवी का सलाम स्वीकार करें।
दोस्तों, ये तो आप जानते हैं कि अफगानिस्तान में लंबे समय से अशांति फैली हुई है। ये बात भी किसी से ढकी छिपी नहीं है कि इस अशांति और उथल पुथल के पीछे किसका हाथ है। अफगानिस्तान की एक अन्य समस्या जिसकी ओर कम ही लोगों का ध्यान जाता है, मादक पदार्थों का उत्पादन और उनकी स्मगलिंग है।
सन 2001 में अफगानिस्तान पर अमेरिका के हमले से पहले, जब वहां पर तालिबान की सरकार थी, मादक पदार्थों का उत्पादन अपने चरम पर था। हालांकि तालिबान का यह दावा था कि वह मादक पदार्थों के उत्पादन और उसकी तस्करी का विरोधी है। पिछले दो दशकों के दौरान जब अफगानिस्तान पर अमेरिकी सेना और नेटो का नियंत्रण रहा, उस दौरान अफगानिस्तान में मादक पदार्थों के उत्पादन ने रिकॉर्ड बनाया था और अफगानिस्तान मादक पदार्थों के उत्पादन में विश्व में पहले नंबर पर पहुंच गया था। अब भी वह इस रिकॉर्ड का स्वामी है।
इस बारे में दो बिंदुओं पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। पहले ये कि संयुक्त राष्ट्र संघ की मादक पदार्थ और अपराध नियंत्रण डेस्क की समीक्षा से ये पता चलता है कि अफगानिस्तान में मादक पदार्थों की खेती में लगे लोगों को $1,400,000,000 का लाभ हुआ। दूसरे ये कि मादक पदार्थों के उत्पादन से होने वाली ये आय अफगानिस्तान की सकल घरेलू आय का 20-30% तक है। इस हिसाब से जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल पैदा होता है वो ये है कि अफगानिस्तान में मादक पदार्थों के उत्पादन और उनसे होने वाली आय का लाभ किन लोगों या किन गुटों को होता है।
ये एक हकीकत है कि अफगानिस्तान में मादक पदार्थों का उत्पादन करने वालों ने इस देश में पाई जाने वाली कुछ कमियों का लाभ उठाते हुए अपने काम को जारी रखा, जो अब भी पहले की तरह आगे बढ़ रहा है। इन राष्ट्रव्यापी कमियों में कानून का कमजोर होना, राजनीतिक अस्थिरता, अशांति, व्यापक स्तर पर फैला भ्रष्टाचार और अफगानिस्तान में मौजूद विदेशी सैनिकों को इससे होने वाले लाभ जैसी बातों का उल्लेख किया जा सकता है।
अफगानिस्तान की पूर्व सरकार की ओर से इस संबंध में की गई समीक्षा ये बताती है कि इस प्रकार की कमियों के कारण देश के 5 लाख से अधिक लोग मादक पदार्थों के उत्पादन और उसकी तस्करी से जुड़े हुए हैं। वे गुट जिनको मादक पदार्थों के उत्पादन से सीधे लाभ पहुंचता है उनमें तालिबान सहित अन्य आतंकवादी गुटों का नाम लिया जा सकता है। डॉच अवेले ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट में बताया है कि अफगानिस्तान में सक्रिय आतंकवादी गुटों की आय का महत्वपूर्ण स्रोत मादक पदार्थों का उत्पादन ही है।
इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि आतंकवादी गुट किसानों को डरा धमका कर वे उनको अफीम की खेती और मादक पदार्थों के उत्पादन के लिए बाध्य करते हैं। शायद यही वजह है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान तालिबान ने उन गांवों पर नियंत्रण कर लिया जहां पर मादक पदार्थों की खेती की जाती थी।
अफगानिस्तान के कंधार प्रांत के मादक पदार्थ निरोधी संस्था के पूर्व प्रमुख गुल मोहम्मद का कहना है कि सरकार में किसी भी स्थिति में देश में मादक पदार्थों के उत्पादन को रोकने की क्षमता नहीं है। अफगानिस्तान की पूर्व सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट के आधार पर तालिबान के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में मादक पदार्थों का जो उत्पादन होता है वो पूरे अफगानिस्तान में होने वाले उत्पादन का 83% है। मादक पदार्थों से होने वाली आय का प्रयोग तालिबान सरकार के विरुद्ध युद्ध और अपने लड़ाकों पर खर्च करते हैं।
इस बारे में अफगानिस्तान में मादक पदार्थों के एक विशेषज्ञ मोहम्मद हाशिम ओर्ताक कहते हैं कि मादक पदार्थों के उत्पादन और उनकी तस्करी से तालिबान को हर साल $500 मिलियन से अधिक की आमदनी होती है। वे बताते हैं कि वे गुट जो मादक पदार्थों से लाभ उठाते हैं वे स्थानीय नहीं है बल्कि वे अंतर्राष्ट्रीय तस्करों का हिस्सा है। विविधित रूप में व्यापार की आड़ में ड्रग्स की तस्करी करते हैं। ये लोग मादक पदार्थों को अफगानिस्तान से यूरोप और अफ्रीका पहुंचाते हैं।
सन 2001 में जब तालिबान शासन गिर गया और अफगानिस्तान में हामिद करजई की सरकार बनी तो उस समय इस्लामी गणतंत्र ईरान ने मादक पदार्थों की खेती को रुकवाकर वहां पर वैकल्पिक खेती का प्रस्ताव दिया था और साथ में ये भी वचन दिया था कि वैकल्पिक खेती के लिए तेहरान बीज भी उपलब्ध करवाएगा, किंतु अफगानिस्तान के ड्रग्स माफिया ने ईरान के इस रचनात्मक प्रस्ताव का विरोध किया। वो दूसरा कारक जो अफगानिस्तान में मादक पदार्थों की बेरोक टोक खेती और उसकी स्मगलिंग का कारण बनी है वो अमेरिका और नेटो द्वारा इससे होने वाली आय को अपनी जेबों में रखना रहा है।
पिछले 2 दशकों के दौरान अफगानिस्तान में मादक पदार्थों की खेती और उनकी तस्करी में तेजी से वृद्धि हुई है। अमेरिकी गुप्तचर सेवा CIA के निकट सूत्रों के अनुसार अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों पर होने वाले खर्च के एक भाग को वहन करने के लिए इस देश में मादक पदार्थों की खेती को बढ़ावा देना और उसकी तस्करी के मार्ग को अपनाया गया है। ये बात इसलिए भी समझ में आती है कि पिछले 20 वर्षों के दौरान अफगानिस्तान के सारे ही एयरपोर्ट और वहां के कस्टम अर्थात बाहर जाने के सारे ही रास्ते अमेरिकियों के नियंत्रण में थे।
हालिया कुछ वर्षों के दौरान मादक पदार्थों की बिक्री को बढ़ाने के लिए अफगानिस्तान के भीतर वहां के युवाओं को मादक पदार्थों के सेवन के लिए प्रेरित किया जाने लगा। ये काम बहुत ही व्यापक स्तर पर किया जा रहा था। हालांकि अफगानिस्तान पर अमेरिका के हमले से पहले तक इस देश में ड्रग्स का प्रयोग करने वालों की संख्या ना के बराबर थी। पिछले 1 दशक के दौरान अफगानिस्तान में एडिक्ट लोगों की संख्या बढ़कर 30 लाख से अधिक हो चुकी है। इस चीज़ को अफगानी जनता के लिए अमरीका का उपहार कहा जा सकता है जो अब अफगानी समाज की एक बहुत ही जटिल समस्या हो चुकी है।
इस विषय की गंभीरता को समझते हुए अफगानिस्तान के धर्मगुरु, विशेषकर नंगरहार प्रांत के धर्मगुरुओं ने एक बैठक आयोजित करके मादक पदार्थों के उत्पादन और उनकी तस्करी को हराम घोषित किया। नंगरहार अफगानिस्तान में मादक पदार्थों के उत्पादन का केंद्र है। इसके अतिरिक्त वहां की मस्जिदों से भी मादक पदार्थ के हराम होने की घोषणा की गई।
इस संदर्भ में अफगानिस्तान के राजनीतिक मामलों के एक टीकाकार यूनुस फकूर कहते हैं कि ये बात सर्वविदित है कि जब तक उच्च स्तर पर मादक पदार्थों के समर्थक मौजूद रहेंगे, उस समय तक अफगानिस्तान से मादक पदार्थों की खेती और उसकी तस्करी को रोका जाना संभव नहीं है। इस बारे में अमरीकी नौसेना के एक पूर्व अधिकारी गोर्डन डैफ कहते हैं कि कतर की राजधानी दोहा में अमेरिका और तालिबान के बीच होने वाला समझौता CIA को हीरोइन के उत्पादन और उसके निर्यात की अनुमति देता है, जिसके बदले में तालिबान को अनुमति दी गई है कि वो अपने विरोधियों पर हमले कर सकता है।
उनका यह भी कहना है कि अफगानिस्तान में अलकायदा और दाइश अमेरिकी सेना के साथ निकट का सहयोग कर रहे हैं, जबकि इस देश में CIA ड्रग्स की स्मगलिंग कर रहा है। यह एक हकीकत है कि न केवल गोल्डन डेफ बल्कि पश्चिम के बहुत से विशेषज्ञ भी इस बात को मानते हैं कि अफगानिस्तान की मूल समस्या वहां पर पैदा होने वाला मादक पदार्थ और इस देश में हर ओर फैला भ्रष्टाचार है। ये दोनों चीजें अमेरिकी प्रयासों के बाद ही अफगानिस्तान में संभव हो सकी हैं। ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान की वर्तमान परिस्थिति को बदलने में अभी समय लगेगा। तो दोस्तों, आशा कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। हमें अनुमति दें।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओं, हमारा प्रयास आपको कैसा लगा, इस बारे में अपने विचार हमें लिख भेजिएगा। हमारा ईमेल आईडी है hindi@wsirib.ir। तो इसी के साथ रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा यहीं पर संपन्न होती है। आपसे अनुमति चाहते हैं। खुदा हाफिज।